ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम अपने प्रभु श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा कृष्ण बलराम गौर नेताय एवं तदीय प्रिया सखी ललिता विशाखा आदियों को विनम्र प्रणाम करते हुए, चराचर विश्वभर में जितने संत साधु हैं, दृश्य अदृश्य सबको विनम्र प्रणाम एवं उपस्थित सभी श्रोताओं को यथानुरूप ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के अनुसार नमन अभिवादन एवं आशीर्वाद देते हुए ये श्रीमद् भागवतम जैसे महान रसमय ग्रंथ का यत्किंचित आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। प्रसंग है दक्ष यज्ञ। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में मैंने पूर्व क्लास में कहा था, चार चीजों का वर्णन हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये धर्म प्रकरण चल रहा है, उसका मुख्य अंग है यज्ञ। परंतु आदिदेव विष्णु के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसी तथ्य को भागवत के इन प्रसंगों के माध्यम से प्रकट किया गया है और उसी प्रसंग में चल रहा है मनु के वंश का वर्णन, कई पुत्र हुए उनके और कर्दम की भी कई पुत्रियां हुई, उनके वंशों का वर्णन चल रहा है। तो चलते चलते एक जगह पर मैत्रेय जी बताते हैं कि सती दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से होता है। सबकी तो प्रजा हुई, सबकी संतान हुई, पर सती समय के पूर्व उसने देहत्याग कर दिया। एक प्रकार से आत्महत्या ही समझ लीजिए, कमिटिंग सुसाइड। वो आध्यात्मिक जगत है, वहां पर सती को इतना दुख होता है, उसने अपने आत्मा को तिलांजलि दे दी, देहत्याग कर दिया। तो कष्ट को थोड़ा विचार करके देखिएगा कितना कष्ट हुआ होगा। तो प्रसंग में विदुर जी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? और मैत्रेय ने कहा कि दोनों में विद्वेष हो गया। किसमें? बोले जामातु ससुरस्य च, ससुर माने दक्ष और जामातु माने उनके दामाद थे भगवान शंकर। बोले दोनों में एक प्रकार से दुश्मनी हो गई, शत्रुता हो गई, जिसके चलते अंततः उसका परिणाम सती को भोगना पड़ा और सती ने अपना प्राणांत कर दिया था। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, ऐसा कौन सी घटना हो गई जो दोनों में इतना विद्वेष हो गया? उन्होंने दो बात कही। यदि आप पूर्व पूर्व प्रसंग पर थोड़ा सा थोड़ी दृष्टि डालेंगे, आपको दिखाई देगा भागवत के शब्दों में क्या अर्थ है। भवे सिल्वरताम श्रेष्ठे, संसार में जितने सिलवान पुरुष है, नम्र पुरुष है, दयावान पुरुष है, ईश्वर भी है, सब में से श्रेष्ठ भगवान आशुतोष शंकर माने जाते हैं। जितने असुर जिनको कोई पसंद नहीं करता, ये सभी जा जाकर श्री शिव जी की शरण लेते हैं। ये संसार में देखा गया है, अच्छों को सभी लोग प्रेम करते हैं, जितने अच्छे होते हैं, रूप हो चाहे गुण हो, विद्या हो, धन हो, जितनी सारी चीजें हैं जिनके पास हैं, सभी लोग उनसे मित्रता करना चाहते हैं। पर जिनके पास ये नहीं है, संसार से जो तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत, उनको शरण भगवान शंकर देते हैं, इसीलिए शीलवान कहे जाते हैं। इतनी शीलता, इतना नम्र भाव और कहीं किसी में दिखाई नहीं देता ना। देवता लोग तो भोगी होते हैं, पर भगवान शंकर भोगी क्या, परम विरक्त है। तो भवे शीलवताम श्रेष्ठे, जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं शीलवान है, भव श्रेष्ठ है, भगवान शंकर श्रेष्ठ है। और दक्ष दुहित्रवत्सल, पिता का प्रेम कन्या से अधिक होता है, ऐसा देखा गया है। हम लोग भी देखते हैं, कहीं जाते हैं प्रचार में, माँ की तरफ लड़का चलता है और पिता की तरफ लड़की चलती है, ऐसा सब लोग देख सकते हैं। कहीं मेले में भी, रास्ते में भी, पिता के साथ साथ अपनी पुत्री चलती है और माँ के साथ साथ पुत्र चलता है। तो शास्त्र भी यही प्रमाणित करते हैं कि पिता दक्ष, उनका अगाध स्नेह था सती के प्रति, ये छोटी कन्या थी, ऐसा माना जाता है। तो स्वाभाविक प्रेम है पिता का प्रेम। यद्यपि शिव जी का शील नहीं भी रहता, यदि मान लीजिए देखा भी जाता है कहीं किसी किसी जगह में, दामाद जो सन इन लव हुआ करते हैं उनमें कभी कभी गुण नहीं दिखाई देते हैं, थोड़ी बहुत अवगुण दिखाई देते हैं। हमको ऐसी एक घटना याद आती है, हमारे एक भक्त भी है, उनका दामाद अच्छे नहीं है, अच्छे माने वैसे रोजगार क्षम उतने नहीं है, वो नहीं है, पर वो अपनी पुत्री के लिए प्राय हमने सुना कि 30-40 हजार रुपये महीना भेजा करते हैं उनके मेंटेन के लिए। तो शास्त्र में यही प्रमाणित तो होता है, यद्यपि शीलवान शिव नहीं थे पर दक्ष तो कन्यावत्सल दुहित्रवत्सल थे, फिर भी क्यों झगड़ा हो गया। थोड़ा बहुत कुछ शिव में कमी भी हो जाती तब ये उनको मेंटेन कर लेते, चला लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। इतनी तीव्रता, इतनी दुश्मनी, इतना बैर विरोध होने लगा कि अंततः सती को देहत्या करना ही पड़ा। तो क्यों करना पड़ा, ये सब धीरे धीरे इस प्रसंग के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे। आइए आज के श्लोक में हम देखते हैं कि शिव जी के साथ जो विरोध खड़ा हुआ और क्यों खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ, और दक्ष जैसे व्यक्ति उन्होंने शिव जी के प्रति कितने कटु शब्द का प्रयोग किया है, इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं इस श्लोक के माध्यम से। आइए भागवत के श्लोक का पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 2 का ये श्लोक क्रमांक है 10, मेरे साथ पढ़िएगा। अयम तू लोकपालानां यशघ्न निरपत्रपः तदभी आचरिताः पंथा एन तब्धेन दूषिताः। अयम तो लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपाः तद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषिताः। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपाः तद्भिराचरितः पन्था। श्री शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? दक्ष जी कह रहे हैं। इसका ज्यादा रिपीटेशन करना नहीं चाहिए ना। तात्पर्य, दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया, अशिष्ट आचरण क्या किया था भगवान शंकर ने? हाँ, दक्ष सोच रहे थे कि ये मेरा दामाद है, जैसे मैं सभा में प्रविष्ट हुआ तो इनको चाहिए था कि खड़े हो जाए और हमें दंडवत प्रणाम ही करे, पर उन्होंने नहीं किया था। दक्ष द्वारा शिवजी के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। प्रभुपाद जी ने भी इसकी व्याख्या डायरेक्टली नहीं की, प्रत्यक्ष रूप में इन शब्दों का अर्थ नहीं लिया, सरस्वती प्रकरण अर्थ का लिया है जिससे प्रशंसा हो सकती है। उदाहरणार्थ दक्ष ने कहा कि ये यशोघ्न है, अर्थात नाम तथा यश को नष्ट करने वाला, कौन? भगवान शंकर। किंतु इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वो इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया था, दब गया था। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रप का भी प्रयोग किया है जो दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है, एक का अर्थ है बौना, दूसरा अर्थ है आश्रय इनों का पालनहारा। सामान्य रूप से श्री भूतनाथ अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात हैं, श्री माने जाते हैं, इनको भूतनाथ कहते हैं। हमारे यहाँ मथुरा में जो महादेव है उनका नाम है भूतेश्वर। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी, ये शिव जी के शरण में जाते हैं क्योंकि ये सबों पर दया करने वाले हैं। मैंने क्लास के प्रारंभ में कह दिया कि जिनको कोई शरण नहीं देता उनको भगवान शंकर ही शरण देते हैं, क्योंकि वे सब पर दया करने वाले एवं जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए वे आशुतोष भी कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवता या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते उनके लिए शिव शरण देने वाले हैं, अतः निरपत्रव शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी को भी अच्छा नहीं लगा दक्ष ने जो जो कटु वचन कहे। अयम तु लोकपालानां यशोघ्न निरपत्रपः सद्भिराचरित पंथा येन सप्तब्धेन दूषितः। विश्वसृजा यज्ञ हो रहा था सृष्टि के समय का ये प्रसंग है, तो अत्रि, वशिष्ठ, चबन, अंगिरा, ये सब बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग उस सभा में उस यज्ञ मंडप पर वहाँ यज्ञ स्थल पर उपस्थित है। यज्ञ शब्द के यज्ञ शब्द जो धातु है यज धातु, वे उसका दो तीन अर्थ है, देवजजनम संगतिकरणम दानम, ये तीन तीन अर्थ मान लीजिएगा। जहां कहीं यज्ञ शब्द आएगा उसका तीन अर्थ आप लोग सभी ध्यान में रखिएगा, संगतिकरणम दानम और यजनम, माने देवता की पूजा होगी, भगवान विष्णु का पूजन षोड़श उपचार में किया जाएगा, संगतिकरण माने शास्त्र की चर्चा होगी एवं दान अवश्य होगा। ये तीन चीज है, इसलिए वहां सब देवर्षि ब्रह्मर्षि उपस्थित थे उस सभा में उस यज्ञ स्थल पर, और वो यज्ञ का नाम था विश्व सृजा यज्ञ, और उसके जो मुख्य आयोजक थे वो थे महाराज दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो दक्ष ने यज्ञ का आरंभ अथवा आयोजन कराया, सबको निमंत्रण दिया, और सभी लोग अकेले नहीं आए थे, अपने पत्नियों के साथ, पुत्रों के, संतान संतंतियों के साथ एरोप्लेन में विमान से वहां उपस्थित हुए थे। बहुत बड़ा यज्ञ था, विश्व के इतिहास में ये बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है, और शास्त्र में कहा गया ये यज्ञ यहां से भारतवर्ष में यहां से 600 किलोमीटर दूरी पर हो रहा था। वो स्थान कौन हो सकता है? हाँ जी, हाँ, हरिद्वार यहां से 600 किलोमीटर है क्या? यहां से हरिद्वार कितना होगा? 300-400 किलोमीटर होगा। यहां से 650 किलोमीटर दूरी पर प्रयाग है। तो शास्त्रकारों ने निश्चित किया है कि प्रयाग नामक स्थान पर यह विश्व सृजा यज्ञ हुआ था। तो वहीं पर प्रयाग प्रकर्षण याग यस्मिन, जिस जगह पर केवल यज्ञ ही यज्ञ होता है उसी जगह का नाम है प्रयाग। हम लोग कितने कमजोर इंसान है, एक तो हमारे प्रयाग नाम को मुसलमान ने बदल दिया, उसने इसका नाम कर दिया इलाहाबाद, है नहीं, और वो इलाहाबाद नाम को बदल करके अंग्रेजों ने रख दिया अलाहाबाद, और हम उसको बड़े प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं, कोई प्रयाग नहीं कहना चाहते। कितने उत्कृष्ट नाम हमारे संस्कृति में है, किसी भी देश का प्रोनाउन जो शब्द है उसको बदलाया नहीं जाता, उसका अर्थ के अनुसार नहीं किया जाता। भारत का नाम को बदल कर दिया इंडिया, उसको हम लोग ग्रहण भी कर लिए। भक्तों में स्वाभिमान होना चाहिए, बदलाव तो जरूरी है। ये जो पठन पाठन है इसका मूल उद्देश्य है हमारे चरित्रों का बदलाव। बदलाव नहीं हुआ तो सुनने पर भी कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने पर संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ता है, आध्यात्मिकता के प्रति व्यक्ति में सजगता पैदा होती है। प्रयाग वो स्थान पर यज्ञ हुआ था, सभी सिद्ध संत ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि वहां उपस्थित थे, तो दक्ष वहां पधारे। जैसे दक्ष पधारे उनके लिए अच्छा आसन था पहले से, तो सभी लोग खड़े हो गए। स्वभाषा अपने अपना तेज अपना प्रभाव इतना था दक्ष का कि वहां अग्नि तक खड़े हो गए। देवताओं में जितने देवता है सबसे शक्तिशाली देवता अग्नि माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली देवता। उपनिषद में वर्णन आता है कि जब वो यक्ष रूप में भगवान महाविष्णु प्रकट हुए थे, उनको चैलेंज देने के लिए अग्नि गए थे। सबसे तेजियान सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, फिर वायुदेव माने जाते हैं, अग्नि और वायु। तो कहा जाता है कि स्वभाषा क्षिप्त तेजसः, कि अन्य अन्य दूसरे देवताओं का जो तेज था, जो प्रभा थी, जो आभा थी, वो दक्ष के प्रवेश मात्र से सब निष्क्रिय हो गई। सब अग्निदेव खड़े हो गए, इंद्रदेव खड़े हो गए, वायुदेव अपने आसन पर खड़े हो गए, जहां जिस स्थान पर जो थे सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। आओ जी दक्ष जी आए। लेकिन रीते दोनों को छोड़कर एक है श्री ब्रह्मदेव और एक है भगवान शंभु, इन दोनों ने दोनों खड़े नहीं हुए। तो श्री दक्ष जी को लगा श्री ब्रह्मा जी ये तो हमारे पिता हैं, पितृदेवो भवः, पिता देवता होता है, पिता व्यक्ति के लिए देवता है, देव हैं, तो ये नहीं खड़े हुए तो मुझे कोई अपमान की बात नहीं है, मुझे कोई अपमान नहीं है। परंतु ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसका क्या बिगाड़ा? और दूसरी बात है, ये तो मेरा दामाद ही लगता है। देखो एक ये राज विद्या प्रभु अभी हमें पूछ रहे थे, इस मानव समाज में जो नियम है दूसरे समाज में उस नियम का कोई कार्य नहीं होता है। देखिए दोनों है ब्रह्मा जी के पुत्र, भगवान शंकर भी ब्रह्मा के पुत्र है और दक्ष भी ब्रह्मा के पुत्र है, और दक्ष की पुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह होता है। और दो भाई थे, वो दो भाइयों का रिश्ता बदल गया। विदुर जी कह रहे हैं कि एक बना ससुर और एक बना दामाद जामाता। तो ये नियम यहां लागू नहीं होता, मानव समाज में लागू नहीं होता, इसको ध्यान में रखते हुए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो नियम ब्रह्मचारी के लिए लागू है वो नियम गृहस्थों के लिए लागू नहीं है, जो नियम वानप्रस्थियों के लिए लागू है वो नियम सन्यासियों के लिए लागू नहीं है। एक के लिए जो करणीय है दूसरे के लिए वो अकरणीय है, ये सब मानना चाहिए, जानना चाहिए, अन्यथा शास्त्र में बहुत बहुत विरोधाभास होता है। व्यक्ति शास्त्र अध्ययन करने पर भी वो संतुलन खो बैठता है, उसकी समझ बिगड़ जाती है। तो दोनों में विद्वेष पैदा हो गया। क्यों विद्वेष पैदा हो गया? दक्ष जी में सम्मान का बोध बहुत अधिक था, एक संत ने कहा, संतों को श्रद्धा लेते लेते उनकी आदत ही ऐसे पड़ जाती है। आप देखिएगा, जो विषयी होते हैं वो विषयों में प्रीति रखते हैं। यदि शादी ब्याह हुआ और किसी के यहाँ हम चले गए, वहां पे 56 प्रकार के भोज नहीं मिले तो लोग कहें क्या बनाया, लड़की को ऐसे ही शादी दे दिया, खाने का पानी तक पीने नहीं दिया। विषयी लोगों को विषय चाहिए, कन्या रूपम इच्छन्ति पिता इच्छन्ति गुणम, कन्या रूप चाहती है, माता धन चाहती है, पिता गुण चाहता है, लेकिन मिष्टान्नम इतरे जनाः, जो निमंत्रित होते हैं अतिथि लोग ये कहते हैं हमको गुण रूप मान से कोई मतलब नहीं, हमको रसगुल्ला कचौड़ी खिला दो, हम उससे ही मतलब रखते हैं। तो खाने खिलाने में ये आ जाते हैं, विषयी लोगों का विषयी आहार है। उसी प्रकार साधु श्रद्धा का आहार करता है, साधु श्रद्धा भोजी है, लोग बड़े आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान देकर यदि पानी भी एक गिलास दे देते हैं, दूध एक कटोरा पिला देते हैं, उससे साधु प्रसन्न हो जाता है। पर ये श्रद्धा पाते पाते साधु भी कभी कभी बिगड़ जाता है, ऐसा होता है। हजार लोग कहीं चले गए, पंडाल में बैठे हैं, हजार लोग श्रोता है, जैसे ही पंडाल से ब्यास से उतरता है तो हजार लोग चरण छूते हैं। दूसरी जगह जब भी जाता है मित्र मंडल में, कोई उसको पूछता नहीं बासी पानी से, तो उसके मन में क्षोभ होता है, अरे वहां तो हजार लोग प्रणाम करते थे, यहां कोई नहीं पूछ रहा है। ये आदत भी बिगड़ी हुई होती है। दक्ष जी ठीक वैसा ही थे। दक्ष एक तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्राह्मण थे, देखने में सुंदर थे और गुण विद्या पराक्रम सब में श्रेष्ठ ही थे। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार से वो कोई निकृष्ट व्यक्ति थे, सब अच्छा था उनका। तो अच्छा होने के नाते इतना तेज इतना प्रभाव था तो सभी लोग उन्हें सम्मान करते थे, अग्निदेव तक सम्मान करते थे। इसीलिए जब वो प्रविष्ट हुआ सभा में, वो आशा करते थे कि भगवान शंकर भी उन्हें सम्मान दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खड़े नहीं हुए। जैसे ही खड़े नहीं हुए तो दक्ष जी के मन में एक कुभाव पैदा हुआ, शंकर जी के प्रति एक विद्वेष भाव पैदा होता है। उन्होंने लोगों को दिखा करके कहा, जो ब्रह्मर्षियों की मंडली थी वहां उनको दिखलाते हुए कहा, सुनो 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 श्रूयताम, मैं जो कह रहा हूं आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या सुनोगे क्या कहोगे? देखो मैं कोई अज्ञान से नहीं कह रहा हूं और कोई मत्सरता से नहीं कह रहा हूं। एक संत ने लिखा है, दक्ष ने कहा मत्सरता क्या है, मैं तो जन्म से मत्सरता जानता ही नहीं, क्योंकि मैं विद्वान हूं, विद्वानों के लिए मत्सर भाव शोभा नहीं देता। एक भाई का यदि उत्कर्ष हो रहा है तो उनको होने दो, यदि अच्छा प्रवचन करता है, देखने में अच्छा सुंदर है, विद्या बुद्धि से प्रवीण है, तो दूसरे भाई को चाहे कि उससे प्रसन्न हो जाए, ना कि देख करके जलने लगे, ये अच्छी बात नहीं होती। जो जलता है उसकी ही विद्या नष्ट हो जाती है, संसार में उसकी वाहवाह नहीं होती, ऐसा देखा भी गया है। यदि हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं उसी से समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनती है। हाँ प्रभु आप अच्छे हो, बढ़िया हो, इस तरह से भाव प्रकट किया जाता है। पर दक्ष के मन में तो ये भाव था, पर दिखलाता हुआ उन्होंने कहा, नहीं नहीं सुनो, मैं जो कहता हूं सुनो, मेरे अंदर बिल्कुल मत्सरता नहीं है, मैं बिल्कुल अज्ञान नहीं हूं, जो मैं कहता हूं वह अक्षरश सत्य है। क्या सत्य है न? देखो, अयम तो लोकपालानाम यशोघ्न निरपत्रपाह, इस शिव को देखो, अयम इस शिव को तुम देखो क्या करता है ये, बोले लोकपालानाम यशोघ्न निरपत्रपाह, बोले ये निर्लज है और ये लोकपाल का यश नष्ट करने वाला है। यशोघ्न, यश को घन माने हनन करने वाला, खत्म कर देने वाला है। इस सृष्टि में कई लोकपाल भी हैं, कई दिक्पाल हैं, ये लोकपालानम यश को इसने नष्ट कर दिया। क्या लोकपालों का धर्म है? लोकपाल का धर्म है प्रभु, वे संसार में जो सृष्टि है उसके कानून को बरकरार रखते हैं, नीति नियम को रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो लोकपालों के लिए चाहिए कि एक दूसरे का सम्मान करे, आदर करे। परंतु शिव जी को उन्होंने लोकपालों में गिना। आयम टू, टू शब्द का अर्थ से उन्होंने ब्रह्म पुत्रों में से इसको अलग कर दिया। बोले ब्रह्मा जी के सारे पुत्र तो अच्छे हैं हमको मिला करके, हमको माने दक्ष को, लेकिन ये जो शंकर है, ये जो बिल्कुल अटपटांग वस्त्र धारण करने वाला, ये इन्होंने यश को नष्ट कर दिया। तू शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के, मेरे पिता के जितने पुत्र है वो सब अच्छे हैं, केवल यही एकमात्र उत्पथगामी है, इनका पथ सही नहीं है, इनका रास्ता सही नहीं है, इनका मार्ग अच्छा नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी, ये उत्पथगामी है। तू शब्द से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। वास्तव में तू शब्द का सरस्वती अर्थ हम बाद में कर लेंगे, पर केवल अभी इसका अर्थ सुनिएगा। इन्हें ये बिल्कुल अलग थलग है। हम लोग ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने के नाते विनम्रता गुणों से ब्राह्मण को भूषित होना चाहिए, पर ये ब्राह्मण क्या होगा, ये तो अटपटा व्यवहार करता है, इसलिए ब्रह्म पुत्रों में इनकी गिनती नहीं है, हटाओ इनको। लोकपालानम, लोकपालों का ये सम्मान ये नहीं करता। लोकपाल कौन कौन होते हैं? जैसे सबसे बड़े लोकपाल है इंद्र है, ये लोक को धारण करते हैं, संसार का पालन करते हैं वृष्टि आदि के द्वारा। इंद्र का इन्होंने तिरस्कार कर दिया, इन्होंने वरुण का तिरस्कार कर दिया, इन्होंने सूर्य का तिरस्कार कर दिया, इन्होंने कुबेर का तिरस्कार कर दिया, इन्होंने शेषनाग का भी तिरस्कार कर दिया, और इन्होंने यक्ष राक्षसों का भी तिरस्कार कर दिया, इन्होंने मृत्यु का भी तिरस्कार कर दिया। लोकपालानम यशग्न, इनका जो यश माने, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का यश क्या है, सूर्य का यश क्या है, क्या है सूर्य का यश? सूर्य का यश है वो प्रकाश दे रहे हैं, और अनंत काल से प्रकाश देते आ रहे हैं, यही उनका यश है, यही उनकी महिमा है। पर सूर्य के यश को इन्होंने निरस्त कर दिया। कैसे निरस्त कर दिया? एक विद्युन्माली नामक असुर था, और वो भगवान शंकर का महाभक्त था, तारकासुर का पुत्र ये था विद्युत्माली, और ये ऐसी तपस्या की, भगवान शंकर की तपस्या कर ली कि भगवान शंकर इनके अधीन हो गए, और इनको एक ऐसा सोने का समान चमचमाता हुआ रथ मिला, उसी रथ पर आरूढ़ होकर ये सूर्य का पीछा करने लगा। और पीछा यूं करता था कि सूर्य जिधर चले जाते थे उनका पीछे अंधकार हो जाता था, और उसके पीछे ये रथ चलाता था तो वो रात्रि के अंधकार को नष्ट करके दीवा बना देता था। सूर्य ने कहा, हमारे समान तेजस्वी कौन है, हमारे साथ प्रतियोगिता कर रहा है, सूर्य इनको मारने चले, है ना? जैसे सूर्य विद्युत माली को मारने चला, विद्युत माली भगवान शंकर की शरण में गया, और भगवान शंकर अपना त्रिशूल उठाकर सूर्य को मारने चले, और सूर्य भयभीत होकर काशी में गिर गए, जिस स्थान का नाम अभी भी है लोलार्क। अभी भी शंकर वहां वो अर्क माने सूर्य वहां गिरे हैं काशी में। काशी देखा है आप लोग? काशी में लोलार्क नामक एक स्थान है। विद्युत माली के लिए भगवान शंकर ने सूर्य को हतप्रभ कर दिया। इसका मतलब हुआ कि सूर्य के जस को इन्होंने नष्ट कर दिया, धूल में मिला दिया। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने सूर्य का अपमान कर दिया है, इंद्र का अपमान कर दिया। इंद्र का कैसे अपमान कर दिया? इंद्र देवता है, विद्युत माली असुर है, और इसमें इतनी ताकत उन्होंने दे दी भगवान शंकर ने, उन्होंने इंद्र को भी हरा दिया। और वर्षा नहीं होती थी, इंद्र वर्षा नहीं करता था, द्वेष हो गया, इंद्र ने कहा चलो तेरे देश में हम वर्षा नहीं करेंगे। अब भगवान शंकर उनको इतने धमकी दिए, इंद्र ने वर्षा कराई। तो इंद्र का यश वर्षा में है, उस वर्षा उन्होंने भगवान शंकर ने विद्युत माली के लिए करा दी। शिव जी ने सूर्य को हतप्रभ कर दिया, और क्या क्या किया आप लोग देख सकते हो। शिव जी गए या सूर्य चले गए, वरुण चले गए। अच्छा, अग्नि देखो, अग्नि का भी पराभव हो गया, अग्नि भी एक लोकपाल है। कैसे पराभव होता है? जब काम भगवान शंकर को विचलित करने आया, भगवान शंकर ने अपने इस ललाट से एक नेत्र उत्पन्न किया, और उस नेत्र के माध्यम से उन्होंने कामदेव को जला डाला। तो इस प्रकार से उन्होंने अग्नि का ही तिरस्कार कर दिया। मान लो अग्नि समझे कि जलाने की क्षमता केवल मेरी है, ये मेरी सामर्थ्य है। भगवान शंकर कहा तेरी सामर्थ्य क्या है, मेरी आंखों में वो सामर्थ्य है। आप समझ रहे हैं ये सब कितना भावगर्भक पद है। अयम तू लोकपालानम यशोघनः, यश को हनन करने वाला है। शेषनाग, शेषनाग के महिमा को भी ये नष्ट करने वाले। कैसे? शेषनाग के फण पर ये विश्व तिल के समान, सरसों के दाने के समान रहता है, ठीक है ना। पर उस शेषनाग को भगवान शंकर ने अपने कमर में लपेट दिया, बोले तुम यहीं पे रहो, ठीक है। और जल में विहार करने वाले जो यादस हैं, जो जलजीव हैं, वो सागर में रहने वाले हैं। और उस सागर को प्रलय के समय भगवान शंकर पी जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वरुण देव का भी तिरस्कार कर दिया। भाई वरुण को कहा जा सकता था कि ये तुम्हारा जल है, तुम इसको समेट लो, नहीं, कहने की जरूरत है नहीं, प्रलय काल के समय वो स्वयं पी लेते हैं। और जलचर कहां जाएंगे? मान लीजिए जलचर कहीं रुदन करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण किए हुए रहता हूं, तुम लोग गंगा जी में वास करो। इस प्रकार से भयंकर तिरस्कार कर देते हैं। और कुबेर को देखो, कुबेर भी एक लोकपाल है। कुबेर का जस है कि उनके पास अमाप पर्याप्त अपर्याप्त मात्रा में धनराशि है, पर कुबेर का सखा होते हुए भी भगवान शंकर कभी अपने लिए कोई महल नहीं बनवाया, नहीं बनवाया। वृक्ष के कहीं बरगद के नीचे, कहीं पीपल के नीचे ये वसवास करते हैं। ये सखा के लिए अपमान नहीं है, ये सखा के लिए अपमान है। जब सखा सुदामा चार मुठी तंदूर लेकर द्वारका में प्रविष्ट होते हैं और श्री द्वारकाधीश परम आनंद के साथ, जैसे कई दिनों का भूखा प्यासा हो, तो उसी प्रकार से वो चट्टान पर, उस फर्श पर बिखरे हुए उस तंदूल को भोजन करते हैं। उसी समय एक मुट्ठी खाने के पश्चात श्री रुक्मणी जी उनके हाथ को पकड़ लेती है। उसी समय श्री कृष्ण उनसे कहते हैं आप क्यों पकड़ती हो, क्यों आप पकड़ती हो? तो रुक्मणी कुछ कहने से पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा संसार को हम भरण पोषण करते हैं, निर्वाह करते हैं, और मेरा कोई सखा कह करके दरिद्र रहेगा, ये कलंक मुझसे सहा नहीं जाता। मेरे हाथ का तू छोड़ दे और आज मैं सुदा को इतनी संपदा दूंगा इंद्र भी देखेगा, ऐसा कहा गया। श्रीदाम रंक भक्तार्थम आनी तो इंद्र वैभव, बोले श्रीदाम नामक एक ब्राह्मण के लिए स्वर्ग से इंद्र वैभव को भी लाने वाला है श्री कृष्ण। उन्होंने अपने मुख से कहा है श्री, सारा संसार में कोई कह दे कि श्री कृष्ण का मित्र रंग कहे दुखी है, ये हमारी बदनामी है, ये बदनामी हम सह नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण अपने भक्तों को दरिद्र नहीं रखते, कभी नहीं रह सकता कोई। हाँ, समय के अनुसार उपयुक्त समय देख करके वो धन देते हैं। बालक है, अस्त्र चलना नहीं जानता, उसके हाथ में बंदूक दे दो, हो सकता है कि उसी बंदूक से वो अपनी मां की हत्या कर सकता है, पिता की हत्या भी कर सकता है, चला ही देगा, उसको पता ही नहीं। कितनी बड़ी बात कहते हैं श्री, तुम मेरा हाथ को छोड़ दें, संसार में मेरी बदनामी को आप रोक दें। कोई कह दे कृष्ण सखा सुदामा गरीब है, ये कलंक हमसे नहीं सहा जाता, हम अपने माथे पर ये कलंक नहीं ले सकते। तो श्री कुबेर जी के मित्र हैं भगवान शंकर, तो शंकर गरीब रहे ये कुबेर को पसंद है क्या? पसंद नहीं है। कुबेर कह सकता था आप हमसे हीरा ले लो, माणिक्य ले लो, मोती ले लो, जो चाहे आप ले लो, जो माला आप बना करके पहनना चाहते हो पहन लो, पर शंकर को पसंद नहीं है मुंड माल, गलरुंड माल, ये गले में नरकंकाल नरमुंड का माला धारण करते हैं, ये कोई मोती है? कुबेर की कितनी बदनामी होती है। इसी प्रकार से और भी भाव आ सकता है, जितने भी लोकपाल थे सबका जस को शंकर ने धूल में मिला दिया। यहां तक कि ब्रह्मा के जस को भी मिलाया। क्या मिलाया? ब्रह्मा तपस्या करके सृष्टि करने लगे और प्रलय में ये उसको नष्ट करने लगे। तेरी सृष्टि का क्या लगता है, हम एक फूंक मारेंगे तेरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा का जस खत्म। तो दक्ष एक एक कहते हैं कि यशोघना निरपत्र पर, इनमें लज्जा नहीं है इसलिए ये करता है। यदि लज्जा होती, तनिक भी लज्जा होती, साधुओं के लिए लज्जा भूषण है, स्त्रियों के लिए लज्जा भूषण है। जो स्त्री निर्लज हो जाती है संसार में उसकी भारी बदनामी होती है, वो खुद बदनामी होती है दूसरों को भी बदनामी कर देती है। लज्जा शब्द का अर्थ होता है शास्त्रानुसार आचरण करना। लज्जा शब्द का अर्थ ऐसा नहीं अब बिल्कुल घूंघट को टान के रखो और बस ऐसा ही होगा, नहीं। मुसलमान जैसे बुरखा टानते हैं, लज्जा तो वो एक प्रकार का अंग हो सकता है। लज्जा शब्द का अर्थ होता है शास्त्र विधि का उल्लंघन करने में चित्त का जो संकोच भाव है उसी का नाम है लज्जा। समझ रहे हैं क्या है लज्जा? चित्त संकोच, ये शास्त्र का उल्लंघन हो रहा है उसमें चित्त में संकोच उत्पन्न होता है उसी का नाम है लज्जा। और श्री कृष्ण प्रीति में इतनी पागली हो गई थी वो गोपियां, या दुस्तेज्य आर्य पथम चहित्वा, वो दूसरी प्रकार की पगली थी। तो निरपत्रप शब्द का अर्थ होता है ये निर्लज है, इनमें लज्जा है नहीं इसलिए ये सब कर देता है। सद्भीर आचरित पंथा ये न स्तब्ध है न दूषित, और ये स्तब्ध हो गया, अनम्र हो गया है, इनमें कोई नम्रता का भाव ही नहीं, इसीलिए सब ये कांड करता है भगवान शंकर। बहुत भारी निंदा कर दी, ऐसे निंदा शंकर की किसी ने इतिहास में नहीं करी। शायद दक्ष का ये इतिहास ये फर्स्ट और लास्ट है, ये पहला एवं अंतिम होगा। दक्ष फिर इसके बाद कभी निंदा नहीं करेगा, जो कहा सो कहा। सद्भीर आचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषितः, लेकिन ईश्वर के लिए जो कहा भगवान शंकर के लिए, सरस्वती को बात पसंद नहीं आई। श्री शंकर और श्री विष्णु में इतना ही भेद है जितना दूध और दधि में भेद है। ईश्वर है ये भगवान शंकर भी ईश्वर है, इसलिए तू शब्द से। अब इसका सरस्वती अर्थ सुनिएगा, श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। अयम तू लोकपालानाम यशोघना, तू शब्द से बोले जितने ब्रह्मा जी के पुत्र है, अयम तू ब्राह्मण पुत्र है ना, जितने ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये पुत्र में से ये अलग थलग है। माने ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं सभी जीवात्मा है, पर ये ईश्वर है। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं दक्ष को मिला करके सभी जीव अंश है, जीव है, लेकिन तू शब्द का अर्थ होता है ये ईश्वर हैं। जैसे सागर में जितने उत्पन्न होते हैं सभी प्राणी मछली आदि होते हैं, लेकिन सागर से उत्पन्न होने वाला चंद्रमा ये मछली नहीं होता है। सागर में मछली उत्पन्न होती है, सागर से ही चंद्रमा का उत्पन्न हुआ है। यदि मछली उनको सोचने लगेगी चंद्रमा हमारे जैसा ही है, वो महाभूल करेगी। इसलिए यद्यपि दक्ष और शिव ये दोनों ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर दक्ष जीवांश है, जीवात्मा है, पर महेश्वर ईश्वरांशवा स्वांश है, ये ईश्वर है। ये सरस्वती का अर्थ हो गया, दक्ष के मुखार मुख से सरस्वती जी का यह अर्थ हुआ। लोकपालानम, ये लोकपाल का यश को हनन करने वाला, दक्ष का भाव यही है कि ये जितने लोकपाल है इनका यश को हनन कर देता है। संक्षिप्त में इसको हम ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं तुल्य जातिनाम सताम एक एक एकस्य अप्रतिष्ठायाम सर्वेशाम यशः लोकैर उद्घुष्यते। ये संस्कृत का वाक्य है। लोकपालानाम है ना, साधु नाम के जितने साधु है, जितने लोकपाल हैं, एकस्य अप्रतिष्ठायाम, यदि लोकपालों में से कोई एक का भी अपजस होता है वो अपजस सबको लगता है। ये टिप्पणी है, लोकपालानाम एक भी लोकपालों में से एकस्य अप्रतिष्ठायाम, यदि एक कोई बुरा काम कर लेता है तो सारा लोकपाल का जितने हैं सबकी बदनामी होती है। इसीलिए दक्ष सावधान कराते हैं कि शंकर जो काम करता है ये लोगों का, ये लोगों सबकी बदनामी कर देता है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। लोक ही और सारा लोक कहते हैं, पूरी जनता कहती है, अपजसम उद्घुष्यते कहता है, घोषणा करते हैं, अरे ये ऐसा ही है, वे ऐसा ही है, वैसा ही है। इसलिए सावधान विधि है, इसलिए सावधान विधि है। हमारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसमें भूल चूक हो भी जाती है, परंतु हम लोग को बहुत सावधान होना पड़ेगा। एक की बदनामी से पूरी संस्था की बदनामी होती है। एकस्य अप्रतिष्ठायाम लोके ही सर्वेशाम अपजसः दुर्जसः लोकैर घुष्यते होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टीकाकारों ने इस बात को लिखा है, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। तो ये दक्ष कहता है, अरे हम लोग ब्रह्मा जी के पुत्र है, कितने अच्छे हैं, ये शंकर हमारे जस को मिट्टी में मिला देता है। पर सरस्वती ने इसका अर्थ किया नहीं, शंकर जी का इतना प्रभाव है, उन्होंने अपने महान गुणों से इनके प्रभाव को संकुचित कर दिया, संकुचित कर दिया इन्होंने। वरुण को, वरुण क्या करेगा, इन्होंने सारे जीवों को, जलचर जीवों को आश्रय दे दिया गंगा जी में। कुबेर क्या करेंगे, इनके धन के प्रति कोई लालच नहीं है, ये बस मुंड माल पहन करके रहते हैं। वैष्णव में इत शंभु ये मुंड माल धारण करते हैं, इसीलिए हम लोग काठ की माला धारण करते हैं, सोना चांदी धारण नहीं करते। पर बढ़िया है आजकल के अटपटंग साधु निकले जो चांदी के स्वर्ण से मढ़वा करके तुलसी धारण करते हैं। जब वो वेश्या हरिदास के पास गई थी, उस हरिदास ने उनसे वेश्या से कहा, जितने आभूषण तू पहन रखा है ना सबको उतार दे। तो वो वेश्या सारे आभूषणों को उतार देती है, तो हरिदास कहते हैं, आज से तुम्हारा आभूषण क्या होगा, काष्ठ और मृतिका हवे तहाते भूषण। बोले मृतिका माने मिट्टी और काठ माने तुलसी। बोले अब तू सजाना चाहती हो तो काठ और मिट्टी से अपने को सजा ले। काष्ठ और मृतिका हवे ताते आभूषण, ये भाव है। तो भगवान शंकर कुबेर की क्या संपदा है, अपने परम वैराग्य के कारण कुबेर के संपदाओं को लांछित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, तेरा धन संपदा से मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये रुंड माला, ये मुंड माला ही हमारी शोभा है। एक भाव हम कह रहे हैं। निरपत्रप शब्द का अर्थ होता है कि इनमें पत्र नहीं है, पत्र माने त्रपा, त्रपा माने लज्जा, संस्कृत में त्रप शब्द का अर्थ होता है लज्जा। बोले निर्लज है, बिल्कुल सही है, भगवान शंकर निर्लज है। वो भगवान शंकर क्या, जिन जिस भक्त में, जिस भक्त में थोड़ी सी भक्ति भी आ जाती है ना, वो निर्लज हो जाता है। लोकलाज खोई, लोकलाज खोई। संसार में जिसके चित्त में थोड़ी सी भी भक्ति आती है, वो लोक लज्जा का तिरस्कार कर देता है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्य जातानुराग द्रुत चित्तम उच्च ही हसत्यथो रोद तिरौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। लोग क्या कहेंगे उसका कोई परवाह नहीं है। मीरा जी को लोगों ने क्या कहा उसकी परवाह उसने नहीं की। इसलिए भगवान शंकर सदैव वासुदेव चिंतन में रहते हैं, तो वो कपड़े पहने नहीं पहने, सांप फुफुकार कर रहा है, अंबिका पास बैठी है नहीं बैठी है, कोई आया कोई गया, लोगों की कोई परवाह नहीं, लोक लज्जा है नहीं, आर्य संस्कृति आर्य धर्म से बिल्कुल ऊपर है। इसलिए निरपत्र शब्द का अर्थ यही है। अथवा दूसरा अर्थ लीजिएगा इसका, नि शब्द का अर्थ होता है निशेषेण सर्वोत्भावेन सर्व प्रकार से, और अपत्र शब्द का अर्थ होता है जिनका कोई रक्षा करने वाला नहीं है। पत्र माने त्राण, अपत्र शब्द का अर्थ होता है जिनके उद्धार की कोई आशा नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं। नि उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है कंप्लीटली पूरी तरह से, और अपत्र शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा त्राण। बोले जिनकी सुरक्षा की कोई आशा नहीं है उनकी रक्षा ये करते हैं। प माने पाती पालयते, जिनको संसार त्याग देता है यदि वो शंकर के पास जाता है, भोले बाबा उनकी रक्षा करेंगे, है नहीं। बाणासुर की रक्षा किसने की? भगवान विष्णु चाहते तो बाणासुर को मार देते, बिल्कुल मार देते, पर उनके उनके सारे भुजाओं को उन्होंने काट दिया, दो चार भुजा छोड़ करके। फिर शंकर जाकर कहे ये मेरा भक्त है प्रभु, इनको छोड़ दो, इन पर कृपा करो। प्रभु ने छोड़ दिया और वाणासुर उनका नित्य दास बन गए, नित्य सेवक बन गए। इसलिए जिनको कोई सुरक्षा नहीं देता भगवान उनकी रक्षा करते, निरपत्रपः। और सद्भीर आचरित्य पंथा येन स्तब्धेन दूषितः, इनको भगवान शंकर को कहा गया स्तब्ध, स्तब्ध शब्द का अर्थ होता है अनम्रह। यदि कोई बड़ों को सम्मान नहीं देता तो उसके लिए संस्कृत में शब्द का प्रयोग होता है, उनको कहते हैं स्तब्ध। और वास्तव में जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा होता है तो स्तब्ध ही हो जाता है। हमें स्मृति स्मरण आ रहा है, वेद में एक मंत्र है, स्तब्धत्वम ही ब्रह्म धर्मः। वेद मंत्र कहता है कि स्तब्धता जो है, मूढ़ता, वो एकदम ऐसे स्थिर हो जाएगा, ये ब्रह्म धर्म है। भक्ति को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, कभी कभी उनमें ये विकार होता है, वो जड़वत स्थिर होता है, जड़वत जड़वत आचरण करता है। स्तब्धत्वम ही ब्रह्म धर्म, वृक्ष इव स्तब्ध दिवितिष्ठति एको हो, तेन पूर्णेन व्याप्तम इदम सर्वम जगत। ये वेद माता, ये वेद का एक मंत्र है। बोले जो परमात्मा है स्तब्ध के रूप में सारा संसार में व्याप्त है, वो पूर्ण परब्रह्म के द्वारा संसार में वो पूर्ण परब्रह्म व्याप्त है। वृक्ष के भांति जैसे वृक्ष स्थिर है, ऐसे परमात्मा सारा संसार में स्थिर है। वृक्ष इव दिवि तिष्ठति, पूरे संसार में, पूरे वायुमंडल में, पूरे आकाश में ही वही परमात्मा तत्व स्थिर भाव में विराजमान है। वृक्ष इव दिवि तिष्ठति एक एक परमात्मा तत्व, तेन पूर्णेन इदम सर्वम व्याप्तम, उसी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के द्वारा पूरा संसार व्याप्त है। यदि परमात्मा में ये भाव है, ईश्वर में ये भाव है, वही गुण उनके भक्त में भी आ जाता है। तो भगवान शंकर में जब वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय, भगवान शंकर सदैव वासुदेव का ध्यान, वसुदेव का ध्यान करते हैं वासुदेव का, तो उनका चित्त में भी ऐसा स्तब्ध भाव, जड़ भाव आ जाता है। तो स्तब्धता उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी देखें ना, कभी भक्त भक्त यदि स्थिर हो जाता है, ध्यान करते करते जड़वत हो गया, जब करते करते जब स्थिरता नहीं होता है, वो भक्ति उतनी तगड़ी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जब करते करते हम लोग इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, देखते हैं, ये जप की पहली भूमिका है। इसको जप अच्छा जप नहीं माना जाएगा। जप शब्द का अर्थ होता है यदि जप करते करते प्रभु में मन का लीन हो जाता है, वो व्यक्ति स्थाणु हो जाता है, जड़ हो जाता है, तो मानना चाहिए कि जप उसका उत्कर्ष स्थान पर है, उत्कर्ष स्थान पर है। वो कितना दूर है हम लोगों से? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। यदि हम लोगों में पश्चाताप होता, सबसे बड़ी चीज क्या, हम लोग आपस में देखते हैं ना, एक दूसरे का बेमतलब की प्रशंसा करते हैं। अच्छी बात है, प्रशंसा करना चाहिए, पर साथ साथ जब सत्संग करें उसमें एक दूसरे की कमी को दिखाना चाहिए, बहुत जरूरी है। जिसके साथ आपसी संबंध है, सबका नहीं है, सबका कमी दिखाने के लिए हमको अधिकार किसने दिया है? यदि दो चार भक्त हम लोग मिलते हैं, वो एक दूसरे की कमी को दिखाएं, यही सत्संग है। अरे हमारी कमी क्या, जरा बताओ, जप मेरा होता है कि नहीं, कैसे मैं जप करता हूं, आवाज स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है, भला इस बात को विचार करिएगा। हरे कृष्ण जब हम जप करते हैं तो हम कृष्ण को बुलाते हैं, हमारे मन मंदिर में हम श्री कृष्ण रूपी अतिथि को बुलाना चाहते हैं, और उस अतिथि को अकेला छोड़कर के मन कहीं भी भटकता है, ये मन की बेईमानी नहीं है? जरा इसको विचार करिए। आपके घर में आपका दामाद आ जाए और आप घर छोड़ करके चले जाओ, आपकी कन्या घर छोड़ करके चली जाए, उसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा, हमको एक अनुभव है ऐसा ही। आज को 10-12 साल पहले हम संकीर्तन करते थे, बस पार्टी लेके गए थे हिसार। हिसार पे हमने गाड़ी लगाई थी, एक माताजी ने हमें निमंत्रण किया अपने घर पर, तो हम गए। दोपहर का समय था तो उसके घर में हम गए तो उन्होंने कहा, प्रभु जी आप क्या लोगे, ये गर्म का दिन है, आप कुछ आम का, आम दूध का लोगे, ठंडा ठंडा लोगे? मैं कहा ठीक है। तो उसने एक बहुत बढ़िया बड़े ग्लास में एक ग्लास दूध ठंडा, एक विशाल आम, एक चाकू रख दिया। ऐसा रख के उस ऐसा ही टूल था डाइनिंग टेबल रख करके वो माताजी गायब हो गई। विश्वास कीजिए मैं घड़ी देखता था, 45 मिनट तक वो माताजी आई नहीं। हम पागल की तरह बैठे रहे और चारों तरफ दरवाजा बंद था। मैं कहा पता नहीं कहां आकर के फंस गए हम। ऐसा मन में तरह तरह के विचार और दुर्विचार सब प्रकट होने लगे। तो मैंने कहा माताजी गई तो कहां चली गई, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? 45 मिनट के बाद जब वो खोली, बोला प्रभु जी आम ऐसे ही रखा हुआ है, आपने खाया नहीं अभी तक। मैंने कहा अकेले खाने की तो आदत नहीं है, और आपने रखा, आपने ये भी तो नहीं कहा कि खाओ। यदि आप यहाँ बैठते हैं, ये एक अतिथि का विचार बनता है, आप आम काट के दे देते अथवा ये दूध को लेकर ग्राइंडर में मिला देते तब हम पी लेते, 5 मिनट में काम खत्म होता। उन्होंने कहा प्रभु जी हमारे घर के रिवाज अलग है, ये सत्य घटना हम कह रहे हैं। उनके घर का जो डाइनिंग हॉल है ना, उनके चार कोने पे चार टेबल पड़ी थी। बोले हमारी बेटी इधर को देखकर खाती है, हमारा बेटा इधर को देख के खाता है, और मैं इधर देख के खाता हूँ, और हमारे प्रभु जी इधर देखकर खाते हैं। मैं बोला हमारा सर्वथा विपरीत है, हमारे बीच में ही डाइनिंग वो टेबल रहता है, बाप पिता माता पुत्र पुत्री भाई बहन सब एक साथ एक तरफ मुंह करके खाते हैं, उसमें बातें करते हैं, ये हमारी प्रथा है, ये हमारी पद्धति है। आप आम रख के चली गई, 45 मिनट हो गए, हम कैसे खा लेते? फिर उन्होंने काट कूट करके हमें आम दिया, फिर हम खाए। तो ये एक अद्भुत भाव है, ये संसार में दिखाई देता है, एक अतिथि सत्कार है। तो श्री कृष्ण को हम अपने अंतर निष्ठा में बुलाते हैं, और बुला करके मन कहीं जाता है और कहीं जाता है। श्री कृष्ण इनको अच्छा नहीं मानते हैं। मन मंदिर में विराजमान, यदि हम यदि इसको मन में सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे मन कंट्रोल में आ जाता है, ये होना चाहिए। इसलिए स्तब्धता जैसे संकर्म है, सम में आने से अच्छा रहेगा। इसलिए श्री दक्ष जी के द्वारा सरस्वती ये अर्थ करती है, नहीं नहीं ये भगवान शंकर लोकपाल के यश को नष्ट करने वाले नहीं है, अपने परम यश के द्वारा लोकपाल के यश को हतत्रप यानी कि हतप्रभ कर रहे हैं। और ये निरपत्रप नहीं है, ये लज्जाहीन नहीं है, ये तो जो अशरण है उनको ये शरण देने वाले है। और ये स्तब्ध नहीं है, ये घमंडी नहीं है, ये लज्जा रहित नहीं है, ये विनम्र ऐसा नहीं कि नम्रता से रहित है, ये तो भक्ति भाव में इतने पूरित है कि इनको संसार का होश आवास तक नहीं है। ऐसे भक्त हाँ इनको तो प्रणाम करना चाहिए। सरस्वती इस प्रकार से स्तुति करती है। परंतु एक प्रश्न पैदा हो सकता है यहां पर, दक्ष जैसे महान पंडित और ये भगवान शंकर की निंदा की तो क्यों की, क्या कारण है? ऐसा नहीं कि दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति था, ब्रह्मा के पुत्र थे और उनमें भी प्रबल विद्या थी और ऐश्वर्य संपदाओं से दक्ष बिल्कुल भरपूर थे, पर उन्होंने शंकर का निरादर क्यों कर दिया? इसका समाधान है मेरे प्रभु, विद्या तपह वित्त बपूर वय कुले सताम गुणई सड़भी असतमयी तरेही। ये भागवत जी का समाधान है। बोले ये 6 पदार्थ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये यदि किसी अभक्त के हाथ में पड़ जाते हैं ना, तो उनके पास ये गुण की जगह पर दोष सिद्ध होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना। बोले विद्या, अब गिनिए कितने होते हैं, विद्या कितना हुआ, 1, जोर से बोलिए, विद्या तपस्या तपस विद्या तपह वित्त, वित्त माने धन, और बपू माने सिर, बयाह माने आयुष उम्र, और कुल कुल माने अभिजात्या, कितने हो गए, 6 हो गए। विद्या तपह वित्त बपूर वय कुले ही सताम गुणे ही बोले जो सत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके लिए ये छह गुण हो जाते हैं, पर यही छह गुण जो है ये असत्य में इतर ही, जो अभक्त है उनके लिए ये दोष हो जाते हैं। कैसे दोष होते हैं? बोले स्थान गुणाम गुणायते, बोले कभी कभी जो वस्तु है वो स्थान के अनुसार उनका गुण प्रकट होता है, वो वस्तु में गुण प्रकट नहीं होता। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब टेक्निकल बात है। हम ये कह रहे हैं स्थानम गुणम गुणायते, कोई आश्रय उसी वस्तु के गुण को बढ़ाता है, उस वस्तु का गुण वस्तु में तुरंत प्रकट नहीं होता। जैसे गोली, बंदूक में जो गोली है उस गोली अपने आप में समर्थ नहीं है, समझ रहे हैं? वो गोली अपने आप में समर्थ नहीं है, उसको ऐसे फेंक दो उससे लोग मरेगा नहीं, लेकिन उस गोली को जब बंदूक के अंदर डाल दी जाती है उससे व्यक्ति जब वार करता है वो काम करेगा। ऐसा ही कुछ कुछ वस्तु हैं। तो ये जो छह बातें हमने कहा, विद्या, तपस्या, वित्तः, बपुर, बयः, कुले ही, ये छह वस्तु यदि भक्त के पास रहते हैं ये बड़े हितकारी है। जैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या की और हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, दोनों की तपस्या बढ़िया है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने कोई विशेष रूप से तपस्या की और हिरण्यकश्यप ने कोई विशेष रूप से तपस्या की, तपस्या प्राय एक ही है, लेकिन हिरण्यकश्यप की तपस्या से सृष्टि का नाश हुआ, खुद मरा, और ब्रह्मा जी की तपस्या से सृष्टि की रचना हुई, ये प्रमाण है। जो विद्या हिरण्यकश्यप ने पढ़ी थी वही विद्या प्रहलाद ने पढ़ी थी। ऐसा नहीं कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हिरण्यकश्यप में नहीं था, था या नहीं था, क्या था, क्या प्रमाण है? हिरण्यकश्यप में आत्मा विद्या थी, ये क्या प्रमाण है? ऐसा प्रमाण है शास्त्र में, ऐसा कहा गया है कि जब वो उनका वो मर जाता है, वो हिरण्याक्ष की पत्नी मर जाती है, वो बढ़िया प्रवचन करता है हिरण्यकश्यप, आत्मा ऐसा है, वैसा है, वैसा है, अमर है, आप लोगों को रोना धोना नहीं चाहिए, बहुत विद्या का बहुत बढ़िया प्रवचन किया, पर वही विद्या प्रहलाद जी में थी, लेकिन इनके लिए बड़ा बुरा हाल हो गया और प्रहलाद जी उसी विद्या के द्वारा अपने संगी साथियों को उपदेश दिया, कीर्तन करने लगे। तो मेरे प्रभु विद्या, तपस्या, बपुर, ऐसे ही सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, बहुत उदाहरण है, पर केवल संक्षिप्त में आप लोगों को ध्यान में देखिएगा, ये विद्या, तपस्या, वित्त, बपुर, यदि किसी कृष्ण भक्त के पास जो अच्छा भक्त हो, जिनमें विनम्रता हो जाता है, तो प्रचार कार्य में बहुत अच्छा होता है। यदि आप में गुण है, आप बढ़िया भजन गा सकते हो, तो बढ़िया जाकर के गाओ और संसार को आप प्रचार कर दो, सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाएं। यदि आप देखने में अत्यंत सुंदर हो तो आपके प्रति लोग आकृष्ट हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकृष्ट होते थे लोग। यदि आप में अत्यंत विद्या है, महाप्रभु चाहते थे कि हमारे संस्था के जितने लोग विद्वान हो, महाप्रभु और गण सब महापंडित, यदि आप में विद्या है उस विद्या के माध्यम से आप पंडितों को पराजित करके संसार में कृष्ण भावनामृत की प्रतिष्ठा करिए, जैसे महाप्रभु ने की थी। लेकिन काश्मीर पंडित के पास विद्या थी, उन्होंने तो डकायत डाका डाल दिया, अब जाकर घर घर में उसने डाका डाला, हम दूसरों को पराजित करके उनका धन खींचता था। इसी प्रकार से ये विद्या, तप, वित्त, बपुर, कुल, ये सभी असत्यम जो अभक्त है उनके लिए ये विपरीत हो जाते हैं। बोले इन दोष के कारण जो अभक्त है स्तब्धान पश्यन्ति हिधाम भूयसाम, बोले बड़े लोगों को पहचान में गलती कर देते हैं। तो श्री दक्ष जी में जो ये छह बातें आ गई, ये भक्त नहीं रहा, ये कर्मकांड पंडित रहा, इनके ये जो छह गुण, ये छह गुण ना हो करके दोष सिद्ध हो गए, उस दोष के कारण उन्होंने शंकर जी में दोष का दर्शन किया, ये समाधान है। स्तब्धान पश्यन्ति ही धाम भूयसाम, यानी कि भूयसाम महात्मा नाम, भगवान शंकर के धाम को, तेज को दक्ष प्रजापति ने देखा नहीं, इसलिए उन्होंने उनका अपमान कर दिया, निरादर कर दिया, ये इसका समाधान है। तो आगे चल के भगवान शंकर तो क्षुब्ध हो जाएंगे, वो तो चले ही गए, पूरा यज्ञ स्थल ध्वस्त विध्वस्त हो गया। आगे चल के भगवान शंकर सती को मना करते हैं, पर सती आती है, फिर सती का देह त्याग होता है, फिर भगवान विष्णु आते हैं, यज्ञ संपन्न होता है और दक्ष को बकरे का सर प्राप्त होता है। तो संसार में दिखलाया गया, जो व्यक्ति संसार में केवल मैं करता है, आगे चल के वो बकरा बनता है। मैं करे बकरा गर्दन उड़ जाए, तू करे मैना बैठा मेवा खाए। एक संत कहते हैं कि भाई जो मैना है वो तू करता है, हरि भजन करता है, उसको मेवा मिलता है, और मैं बकरा करता है तो उसकी गर्दन उड़ जाती है। इसीलिए हम सबको इस श्लोक से ये अर्थ ले लेना चाहिए कि वास्तव में दक्ष ने जो कहा वो अच्छा नहीं कहा। यदि हमारे ईश्वर की कृपा से, श्री हरि की कृपा से विद्या है, तपस्या है, वित्त है, कुल है, अच्छे अभिजात्य संपन्न हम हैं, तो हमको चाहे कि प्रचार कार्य में उसका प्रयोग करें। अन्यथा प्रभुपाद जी की सतर्क वाणी है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, श्रीमद् भागवत के इसी चतुर्थ स्कंध के तीसरे अध्याय में प्रभुपाद जी ने लिखा है, कृष्ण भावना मृत व्यक्ति के लिए धन का होना बहुत ही वांछनीय नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए वानप्रस्थी लाइफ जो लोग बिताने आते हैं उनको चाहे कि आप में ज्यादा धन ना रखे, यहां अपना वैभव का प्रदर्शन ना करके सरलता से जीवन बिताएं। यदि धन है, देयम वित्तम दिनजनायत हितम, संसार को, संस्था को, किसी गरीब को वो धन का वितरण कर दे, उतना ही रखिए जितने में जीविका का निर्वाह हो जाए। राधे धाम में रहेंगे, मर्सिडीज गाड़ी में आएंगे, इससे फायदा क्या है? प्रचार में चले जाओ, गरीबों को बांट दो धन। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है इस बात को। यदि कृष्ण भावना मृत में धन का प्रयोग यदि वो व्यक्ति गुरु को समर्पित कर देता है और वो धन उसका हित है, ठीक है, अपने में अहंकार को नहीं बढ़ाएगा, अन्यथा उस बहुत घातक है। कृपा करके आप उस तात्पर्य को देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा है कि धन की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहो साधु भूखा, इतना ही चाहिए, दो कपड़े चाहिए बस, दो चार रोटी चाहिए, बाकी जितना वैभव है वृंदावन में उसको यथानुयोग्य व्यवहार कर दीजिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियरिवा बुद्ध्यात्मना वानुषुत स्वभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पितात्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।